समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जन्मदिवस या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड अ हार्ट फेल्ट हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। दिस इज शगुन चोपड़ा विद आकर्षिता, एंड एज आकर्षिता टोल्ड यू, देर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ परिक्रमा। वी हैव सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, वील ऑल्सो गिव यू द बिजनेस अपडेट्स एंड वील पे आवर ट्रिब्यूट्स। सो देर इज अ लॉट मोर दैट्स कमिंग अप, सो लिसनर्स मेक श्योर दैट यू स्टिक अराउंड टिल द एंड विद अस, एंड ऑल ऑफ दिस वी हैव ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, एंड वील बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट, शैल वी?
जी। सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादास्पद आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि इसमें संवेदनशीलता की कमी है।
बीजेपी लॉन्चेस सौगाते मोदी कैंपेन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड मुस्लिम्स अक्रॉस द कंट्री अहेड ऑफ ईद।
अमेरिका ने कहा कि रूस और यूक्रेन काला सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमत।
इन साउथ कोरिया एटलीस्ट 18 पीपल किल्ड एज वाइल्ड फायर कंटिन्यू टू रैवेज द कंट्री।
और गुवाहाटी में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स से।
एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड एपिलेप्सी अवेयरनेस डे। वेल, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव विच इज डेडिकेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस पर्टिकुलर कंडीशन एंड डिस्पेल द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस विच आर सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। एंड एपिलेप्सी इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट कॉजेज रेकरेंट सीजर्स विच आर सडन, विच आर अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज इन द ब्रेन।
शगुन, मिर्गी सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है और इसके कारण बार बार दौरे आते हैं। मिर्गी से पीड़ित लोगों को कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसे और जटिल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया के कई हिस्सों में इस बीमारी को हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इससे पीड़ित लोगों के परिवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शगुन, की आपको पता है कि ऐसे लोग जिनको मिर्गी की बीमारी होती है उनको समाज में ऐसा देखा जाता है कि कभी उनकी शादी नहीं होती है या उन्हें नौकरी देने से रोक दिया जाता है, ऐसी भी समस्याएं आती हैं उनके जीवन में। और मिर्गी से पीड़ित लोगों के बहिष्कार के परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्याओं की दर बढ़ जाती है, जिससे मिर्गी का इलाज एक अनिवार्यता बन जाता है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को चिकित्सा के समानांतर संबोधित किया जाना चाहिए। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है और आइए इस मिथक को तोड़ें और मिर्गी से पीड़ित लोगों के लिए अधिक समावेशी समुदाय का निर्माण करें। आइए सुनते हैं मिर्गी के लक्षणों और बचाव के बारे में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मिर्गी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी का सुझाव।
हमारे देश में और विश्व भर में जो मिर्गी के मरीज हैं, उनको दवाई खानी ही है और बिना रोके, बट दवाई खाते हुए भी इनकी कुछ समस्याएं हैं। एक बहुत मुख्य समस्या वो है स्टिग्मा की, जो मरीज को होती है। स्टिग्मा ऐसी चीज है जिससे मरीज अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करता है। जो मरीज हमारी स्टडी में थे वो सब दवाइयों पे थे, जो एंटी सीजर मेडिसिन जो हम एडवाइस करते हैं वो ले ही रहे थे, पर उसके साथ इनको हमने एक तरीके से योग का इंटरवेंशन कराया और उसका असर हमने देखा।
Well, Dr. Manjari Tripathi there, throwing light on this condition. And also, we were talking about seizures. Well, seizures, they can be very frightening to witness, of course. But with proper diagnosis and treatment, many people with epilepsy दे कैन लिव फुलफिलिंग एंड सीजर फ्री लाइफ
जी right? शगुन और जो मिर्गी के जो है ऐसे लोग जो इससे पीड़ित हैं वो योग भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं योग भी उनको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.
राइट, योगा इज स्पेशली वेरी हेल्पफुल. एंड नाउ आई एम गोना फोकस ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दे से दैट अराउंड 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड दे आर अफेक्टेड बाय epilepsy, with 80% residing in low and middle income countries. Research suggests that with proper diagnosis and timely treatment, nearly 70% of epilepsy cases, they can be effectively managed and allow the individuals to lead completely seizure-free lives.
जी, और हमें ऐसे रोगियों से भेदभाव भी नहीं करना चाहिए. ये एक ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज ना किया जा सके. अगर आप दवाइयाँ लेते रहेंगे तो आप ठीक भी हो सकते हैं.
Right, as our expert she told. And the significance of Epilepsy Awareness Day, let's throw some light on that. It extends beyond awareness raising. It plays a crucial role in advocating for policy changes, fostering inclusivity, and also ensure that individuals with epilepsy, they are supported both medically and socially, as you're also saying, Akarshita. And no one should be defined or limited by epilepsy. Well, an inclusive society where people with epilepsy are understood, they are supported, and they are empowered is only possible through awareness, destigmatization of epilepsy, well, the stigma around this situation, this condition, and also advocacy. So today, let's take a step forward towards creating a more educated and compassionate world. Let us stand together to make a change.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Well. Well, we'll start with the Rashtriya Raksha University, an institute of national importance under the Ministry of Home Affairs, has launched a one-year flagship hybrid program, Masters in Financial and Economic Crimes. It is designed for working professionals. The program has been structured in collaboration with the Indian Institute of Corporate Affairs. Our correspondent adds that the institute has helped create new professionals in the area of policing and cybersecurity. We have more on this from our correspondent.
Karnataka ke Shivamogga mein sthit Rashtriya Raksha Vishwavidyalay vyavsay aur aarthik apradhon se jude vishayon par snatakottar padvi pradan karti hai. Is vishay par shiksha ke sath practicals ka labh bhi vidyarthiyon ko pahunchaya jata hai. Raksha Vishwavidyalay ke nirdeshak Dr. Kaiveri Tandon ne Akashvani ke sath jankari saajha ki hai.
शिवमोगा कैंपस में हम बहुत तरह के कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए देते हैं. यहाँ पे हम दो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देते हैं. एक है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसमें हम बच्चों को सिक्योरिटी एस्पेक्ट के बारे में समझाते हैं, जहाँ उन्हें अलग अलग CAPF आर्मी इन सब के बारे में पता चलता है. साथ में अगर बच्चे चाहें इसके बाद वो जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह जॉब कर सकते हैं, या आगे उनके बिजनेस में भी एस्पेक्ट में हम हेल्प करते हैं. बच्चे पुलिस के साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, वो उनकी हाईवे पेट्रोलिंग में जाते हैं, ARSS पेट्रोलिंग में जाते हैं. जब वहां पे वो देखते हैं कि कैसे जो हमारी कॉल्स है वो 112 नंबर पे आती है, वहां पे उनके वो रिस्पॉन्स सीखते हैं. इसके अलावा उनका RAF और बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ हम बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं, कभी 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ताकि वो समझे वही चीज जो हम उन्हें क्लासरूम में समझाते हैं. अगर वही चीजें बच्चे वहां बाहर जाके उनके साथ काम करके सीखते हैं, उसका अलग असर पड़ता है. तो मेजरली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इस बारे में काम करता है. न्यू क्रिमिनल लॉज की अगर हम बात करें, उसमें भी मेंशन कर दिया गया है कि हर एक क्राइम के लिए एक आपके पास सेपरेट जो है वो सोको ऑफिसर होने चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल जो क्रिमिनोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस से हो. तो इसलिए हम ये कोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि फॉरेंसिक साइंस एक्चुअली होता क्या है. क्योंकि सबके लिए फॉरेंसिक साइंस का मतलब है ब्लड सैंपल लेना या हेयर सैंपल लेना. फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी उससे बहुत वास्ट है, जहां पे हम समझते हैं कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है उसके पीछे का रीजन क्या है जो उन्होंने क्राइम किया है.
इनका कहना है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 1 साल का मास्टर्स कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद 93% विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर रोजगार प्राप्त हो जाता है. परिक्रमा के लिए बेंगलुरु से HR सुधींद्रा.
हिमाचल प्रदेश सरकार खेती की लागत को कम करने, किसानों की आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. प्राकृतिक खेती से जहां मानव और पर्यावरण को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाया जा रहा है, वहीं खेती की लागत कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है. एक रिपोर्ट.
हिमाचल प्रदेश की 3,592 पंचायतों में लगभग 2,00,000 किसान 35,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलें उगा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती पर विशेष बल देते हुए इसके लिए 15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। प्राकृतिक खेती करने से कृषि की लागत में औसतन 36% की कमी आई है और किसानों को उत्पादों के लगभग 8% अधिक दाम मिले हैं। प्राकृतिक खेती कर रहे 75% किसान बागवान फसल विविधीकरण की ओर अग्रसर हुए हैं। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीद रही है। राज्य सरकार समृद्ध हिमाचल के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के बजट में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया है। राज्य के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 से बढ़ाकर 61 रुपए करने की घोषणा की गई है। सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति किलो और गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपए करने का ऐलान भी किया है। इसी तरह बजट में सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी 90 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार के इस तरह के प्रयास जहां किसानों और बागवानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करेंगे वहीं उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से प्रभा शर्मा।
Moving on now, let's focus on India's social security coverage, which has seen a significant rise, doubling from 24.4% in 2021 to 48.8% in 2024. Citing the International Labour Organization World Social Security Report 2024-26, Union Minister for Labour and Employment Mansukh Mandaviya highlighted the progress made in expanding social security benefits across the workforce. Dr. Mandaviya was speaking at the post-budget webinar on investing in people. We have a report.
The Union Minister revealed that over 17 crore jobs were created in the last decade, with 4.6 crore generated in the past year alone. He said the unemployment rate has declined from 6% in 2017-18 to 3.2% in 2023-24, while female workforce participation has seen a notable increase from 22% to over 40%. Mr. Mandaviya attributed these achievements to the government's progressive policies aimed at fostering economic growth and social security. Aishwarya Rai Nigam, Akashwani, Delhi.
So listeners, now we'll be providing you business updates. The benchmark domestic equity indices closed with a significant loss of over 700 points today. Sensex slipped 729 points or 0.93% to close at 77,288, while Nifty 50 settled 182 points or 0.77% lower at 23,487. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading at 88,030 rupees for 10 grams and silver 999 fine was trading at 99,740 rupees per kilogram when reports last came in.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सातवें दिन पावर लिफ्टर्स और टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पैरा पावर लिफ्टिंग में दिनेश बागड़े ने एलिट 107 किलो में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दिव्येश लदानी ने रजत और जोगिंदर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। एलिट 86 किलो में अरुण मोली अरुण गिरी ने स्वर्ण, प्रभाबेन शियाल ने रजत और शमीम बेन वोहरा ने कांस्य पदक जीता। पैरा टेबल टेनिस में क्वालिफाइंग मुकाबले खेले गए, जिसके बाद कई खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली काजल मकवाना ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती जा रही है।
खेलो इंडिया में अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हम इंडिया के टॉप 8 प्लेयर है जो हमारी कैटेगरी वाइज होते हैं हैंडीकैप में, और उसमें हमको टफ कंपटीशन दी है। गवर्नमेंट अभी सब प्लेयर को बहुत सुविधा अच्छी दे रही है, जैसे कि मुझे व्हीलचेयर में कैसे जाना है, सब प्लेयर को जैसे जैसे कम्फर्टेबल हो वैसे वैसे वो लोग ले जाते हैं वो लोग।
पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी चावड़ा शमीम ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। मेडल टैली के अनुसार 31 स्वर्ण पदक के साथ हरियाणा पहले स्थान पर है। है, जबकि 26 स्वर्ण पदक के साथ तमिलनाडु दूसरे और 22 स्वर्ण पदक के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। परिक्रमा के लिए अभिषेक कपिल।
Now focusing on tennis. Well, tennis star Novak Djokovic has advanced to the ATP Miami Open quarterfinals by defeating 15th seed Italian Lorenzo Musetti. Djokovic has won the Miami Open on 6 occasions but has not featured in the quarters since his last victory in 2016. The 37-year-old is now just 3 wins away from winning his 100th tour level title. He will face Sebastian Korda in the quarterfinals tomorrow.
IPL क्रिकेट में गुवाहाटी में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रनों से हरा दिया।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Philip Gunavardhana's love for India and his efforts towards freedom against imperialist occupation started in the early 1920s in the USA. He was a classmate of Jayaprakash Narayan at the University of Wisconsin, where he advocated for freedom from imperialism. In 1928, Philip came to England and participated in the activities of the Indian League with V.K. Krishnamenon.
When World War II broke out, the Lanka Samasamaj Party, LSSP, openly opposed the British war effort and its members had to go underground. Philip Gunavardhana was arrested and imprisoned due to his open opposition to the British war effort. On the 5th of April 1942, during the Japanese air raid on Colombo, LSSP leaders, including Gunavardhana, were able to escape from prison. Disguised as Guru Sami, Philip escaped to India along with his wife, Kusuma.
In India, the couple joined the underground activists who were fighting for Indian independence. In 1943, Philip and his wife were captured by the British. They were imprisoned at the Arthur Road Jail in Bombay. After 1 year, they were deported to Sri Lanka and released only at the end of the Second World War in 1945.
Post-independence, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, visited their family home in Sri Lanka to personally thank the couple for their support to India's freedom movement and their personal sacrifice.
After Sri Lanka gained independence from the United Kingdom in 1948, both Philip and Kusuma went on to become members of Parliament. Philip was a founding leader and cabinet minister of the People's Revolution Government in 1956. He's also known as the father of socialism in Sri Lanka. Philip Gunavardhana remained active in public life in Sri Lanka till his death on the 26th of March 1972.
Culturally, socially and historically, India has been Sri Lanka's closest neighbor for thousands of years. The sacrifice given by Philip Gunavardhana and the unsung martyrs of Sri Lanka symbolize the bond the two countries share with each other.
We also remember freedom fighter Bhikaji Rao Jizaba Khatal Patil, popularly called Dada or Khatal Sahib. He was born on the 26th of March 1919 in Ahmednagar, Maharashtra.
He was an active participant in the struggle for independence of India.
In the 1930s, at a young age, Khatal participated in the civil disobedience movement.
Later, he started his career as a lawyer. He grew up to be a famous lawyer in Maharashtra. During the Quit India movement, he was active in the region of Ahmednagar. He was a member of the Maharashtra Legislative Assembly from 1962 till 1985. He served as the minister in the Maharashtra cabinet for a period of over 16 years, handling diverse portfolios. He spearheaded multiple developmental projects in Maharashtra, including building of dams and construction of sugar mills.
Throughout his political career, Patil Sahib was revered for his honest behavior in public life. He was so principled that he never even let his family members use his government vehicle while he was minister. In 1985, he retired from active politics. Patil spent the rest of his life pursuing his interests that included meditation. B.J. Katar Patil also authored several books in Marathi before he breathed his last on the 16th of September 2019.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। श्रोताओं, आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय कलाकार कंटीगरी कृष्णा हिब्बार को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें मुख्य रूप से कलाकृतियों के लिए जाना जाता है और वे अधिकांशतः भारत विषयक कलाकृति ही बनाया करते थे। उनकी कला पॉल गोगिन और अमृता शेरगिल से प्रेरित थी। आर्ट नाउ इन इंडिया में उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीता। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वेल लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग वॉल्ट व्हिटमैन, पोएट, जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट। लेट मी टॉक अबाउट वन ऑफ हिज वर्क्स कलेक्शन व्हिच इज लीव्स ऑफ ग्रास, व्हिच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855 एंड इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर in a broader sense. And in Leaves of Grass, he celebrated democracy, he celebrated nature, love and also friendship.
आज भारतीय गीतकार और संगीतकार आनंद शंकर की पुण्यतिथि है। वे विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर के भतीजे थे। इन्होंने अपने जीवन काल में पूर्वी संगीत शैलियों में पश्चिमी संगीत शैली का उत्कृष्ट मिश्रण कर संगीत को एक नया रूप दिया। सन 1990 के दशक के मध्य जब डीजे की संस्कृति का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो आनंद शंकर ने भी डिस्को के अनुरूप संगीत का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने वर्ष 1996 में ब्लू नोट्स के अंतर्गत ब्लू जूस वॉल्यूम 1 नामक नए एल्बम का निर्माण किया। इसके दो संस्करण लॉन्च हुए थे, स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता और डांसिंग ड्रम्स।
Well, throughout Anand Shankar's long and illustrious career, he pioneered the bringing together of Eastern and Western music and the joining together of people. Well, he was an original musician of the world before the term world music was invented. Well, he was open-minded and far-sighted, and he opened a door onto possibilities that seem even more relevant now than they did in the 60s. And I have something to share which he said. So let me quote him, Akarshita. He said, "My dream is to break barriers, any kind of barrier, through music, through love, affection and compassion. I have this dream of musicians from all over the world playing for an audience all over the world. When we are all here, we are one, and we go out, and I'm sure we will all be one." This was said by Anand Shankar.
और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आनंद शंकर ने भारत सरकार द्वारा संचालित दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले तत्कालीन चर्चित सीरियल ब्योमकेश बख्शी के लिए भी म्यूजिक दिया था। गीत संगीत के प्रति समर्पण को देखते हुए आनंद शंकर को सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनका ये फ्यूजन। मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, स्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। आज उनकी जयंती है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता था। महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में होती है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता से संसिक्त कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला, विरह को दीप शिखा का गौरव दिया, मानवतावादी काव्य के चिंतन को प्रतिष्ठापित किया। महादेवी वर्मा के गीतों का नाद सौंदर्य, टहनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है।
Well, she was one of those poets, Akashita, who worked for the wider society of India. Her poetry, along with the work towards social upliftment and women's welfare, were depicted very well in her writings. And the Chhayavad period, which you were talking about, well, in Hindi literature, this is a movement which is characterized by romanticism and humanism. And she's considered one of the four major pillars of the Chhayavadi era in Hindi literature.
Unki pramukh rachnaye hain Deep Shikha, Mera Parivar, Smriti Ki Rekhain, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां। उन्हें भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में उनके कुछ शब्द।
राजनीति शक्ति चाहती है, वो त्याग नहीं चाहती। कर्तव्य से जो मिलता है वो तो महत्व का है, और राजनीति से मिलता है तो कुटिलता की नीति है। उससे जो मिलता है सब देखिए, आवाज आप इलेक्शन के लिए जान तो 5 लाख चाहिए। 5 लाख देखा ही वाले आदमी नहीं होगा तो कहाँ से लाएगा? बहुत तरह की बेईमानी से लाएगा। तब फिर उसने अपने चरित्र का खो दिया। चरित्र ऐसा है कि देखिए, फूलों को आप तोल सकते हैं, गिन सकते हैं, बेच सकते हैं, इसके सौरभ को तो नहीं आप ना तोल सकते ना बेच सकते। वो हवा में मिल जाता, एक हो जाता।
Well, now let's talk about a musician, Ludwig van Beethoven. One of the most monumental and widely celebrated classical composers, he revolutionized the art form with his groundbreaking compositions and unmatched creative genius. Well, one of his Beethoven's most significant achievements during his younger years was his growing reputation as a piano virtuoso and improviser. In his late 20s, Beethoven's hearing loss began to decline. There is no definitive date which pinpoints the exact onset of his deafness, but he first started noticing symptoms such as ringing in his ears and difficulty hearing conversations and music. And paradoxically, Beethoven's later years witnessed a surge of creativity and artistic innovation. And to listen to that, we have this very well-known tune.
आज बंगाली सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक धीरेन्द्रनाथ गांगुली की जयंती है। उन्हें डीजी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मुख्य फिल्में हैं शेष निवेदन, हल बांग्ला, एक्सक्यूज मी, बिलायत फिरत, विद्रोही आदि। भारतीय सिनेमा में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें सन 1975 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Well, now let's talk about Steven Tyler, another musician, singer and songwriter. Well, he is the lead singer of the Boston-based rock band Aerosmith. He is well known for that, and he plays keyboards, harmonica and percussion. Well, Agashita, he is a multi-instrumentalist. He has been called the demon of screaming due to his high screams and a very wide vocal range, which is very, very powerful. And he has been inducted into the Rock and Roll Hall of Fame with Aerosmith. So for you listeners, we have this beautiful song, Dream On, to listen to.
आज कुबेरनाथ राय की जयंती है। वे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण विधार ललित निबंध के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। कामधेनु निबंध संग्रह पर ज्ञानपीठ की ओर से उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता को और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।